आरव माहिरा से मिलने के लिए बाहर गया हुआ था। इस बीच आयु और आर्य अंदर रूम में अकेले थे। आयु ने मुस्कुराते हुए आर्य की तरफ गौर से देखा। उसका आधा चेहरा आरव की तरह तो आधा उसी की तरह लगता था। आयु ने आर्य से हल्का मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हें देखकर कोई भी कह सकता है तुम हम दोनों के बेटे हो। ये सब एक मिरेकल की तरह है। सोचो तो यकीन नहीं होता, लेकिन झुठला भी नहीं सकते। अब आपको यकीन हो गया है तो झुठलाने का सवाल पैदा नहीं होता है। आपने डैड से बात की? कल रात मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने आपके लिए क्या कुछ किया था। क्या उसके बाद भी आप उनके साथ अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ाना चाहती? आर्य ने सीधे सीधे पूछ लिया था। उसने भी महसूस किया था कि आरव और आयु के बीच एक अजीब सी दूरी बनी हुई थी। आयु ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, डोंट वरी, हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा छोड़ो, अपना बताओ, तुम अब तक सिंगल क्यों हो? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए। आप दोनों के जाने के बाद ऐसा लगा, जब प्यार का ये हाल होता है तो फिर क्यों ही प्यार करना या क्यों ही किसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना। बस अपना सारा टाइम अपने करियर को दिया और कुछ नहीं। आर्य ने कम शब्दों में अपनी जिंदगी के बारे में बता दिया था। वैसे तो उसकी लाइफ से जुड़ी काफी बातें आयु पहले से जानती थी। आफ्टरऑल वो उसकी फैन जो थी। और हमारी फैमिली में कौन कौन है? आयु ने पूछा। वो सबके बारे में जानने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। आर्य ने अपना मोबाइल निकाला और फिर सबकी फोटो दिखाते हुए उसे आयु से इंट्रोड्यूस करने लगा। उसने नई फोटोज के साथ बजाय पुरानी फोटोज निकाल रखी थी ताकि आयु को यकीन हो जाए कि वो उनसे दिल से जुड़ी हुई है। आर्य ने सबसे पहले अयान और साक्षी की फोटो निकाली जो आयु के साथ थी। उसने बताते हुए कहा, ये मेरे चाचू और आंटी हैं। डॉक्टर अयान सिंघानिया को तो आप जानती होगी, वो डैड के छोटे भाई हैं और आपके बेस्ट फ्रेंड थे। जैसे ही आयु ने सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे तो एक पल के लिए यकीन भी नहीं हुआ। उसने आर्य का हाथ पकड़कर जल्दी से पूछा, सच कह रहे हो? मेडिकल वर्ल्ड में डॉक्टर अयान सिंघानिया का एक अलग ही नाम है और मैं उनकी फ्रेंड थी। मैं डॉक्टर अयान सिंघानिया की फ्रेंड थी। अभी भी आयु यकीन नहीं हो रहा था तो वो बार बार अपनी बात को दोहरा रही थी। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल, आप चाचू की बेस्ट फ्रेंड थी और उन्हीं की तरह एक अच्छी डॉक्टर थी। अगर आप जिंदा रहती तो शायद चाचू की तरह आपका भी एक अलग ही नाम और पहचान होती। तब तो सच में मुझे जिंदा रहना चाहिए था। मैं काफी लकी थी जो अयान सिंघानिया की फ्रेंड थी एंड तुम्हें मैंने ही पैदा किया, आयु ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, आप लकी तो बहुत थी क्योंकि आरव खुराना जैसा शख्स आपसे प्यार करता था। बाकी डैड की पर्सनैलिटी के आगे चाचू और मैं दोनों ही फीके पड़ जाते, आर्या ने हल्के तरीके से कहा। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी आरव वहां पर पहुंचा। उसे देखते ही आयु का ध्यान अपनी पुरानी फैमिली से हट चुका था। आयु आरव के पास जाकर जल्दी से बोली, क्यों मिलना चाहती थी वो चुड़ैल तुमसे? माइंड योर वर्ड्स आयु, ये तुम किस लैंग्वेज में बात कर रही हो? आरव ने उसे घूर कर देखते हुए कहा। उसकी नजर आर्या पर गई तो वो आयु की बात सुनकर हंस रहा था। आरव ने तुरंत आर्या को डांटते हुए कहा, मतलब यहाँ भी तुम्हें अपनी मॉम को सपोर्ट करना है? हाँ, थोड़ा फनी और अजीब लग रहा है, पर क्या गलत कहा उन्होंने? वो किसी चुड़ैल से कम थोड़ी ना है जो आपके पीछे पड़ गई है और पीछा छोड़ने का नाम तक नहीं ले रही, आर्या ने कंधे उचकाकर कहा। आयु आर्या के पास गई और उसने उसके साथ हाईफाई की। फिर उसने आरव की तरफ देखकर हंसकर कहा, पहले मुझे डॉक्टर सिंघानिया पर क्रश था, अब जब मुझे पता चल गया है कि ये मेरा ही बेटा है तो मुझे इस पर और भी प्यार आता है और प्राउड फील होता है। देखा कितना अच्छा प्रोडक्ट पैदा किया था मैंने। आयु की बात सुनकर आरव और आरव हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। फिर आयु को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया तो उसने जल्दी से अपना मुंह बंद किया। आयु के चुप होते ही आरव ने आर्य की तरफ देखकर कहा, मैंने टिकट बुक कर ली है, हम तीनों दिल्ली जा रहे हैं। मैं आयु को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता तो इसे भी साथ लेकर चलते हैं। तुमने अयान को सब बता दिया ना कि तुम हमें लेकर आ रहे हो? एक्चुअली मैंने चाचू और आंटी से बात नहीं की है। उन्हें बोल दिया है कि मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है और मैं उन्हें सरप्राइज ही करना चाहता हूँ, आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डॉक्टर अयान सिंघानिया से मिलने के लिए, अपने पिछले जन्म के दोस्त से मिलने के लिए, आयु ने चहकते हुए कहा। फिर वो आरव की तरफ देखकर बोली, हमें ना मरना नहीं चाहिए था, हम पिछले जन्म में कमाल के थे। मेरा तो पता नहीं लेकिन मैंने गूगल पर तुम्हें सर्च किया था, तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज थे आरव खुराना, द सेलिब्रिटी डिजाइनर, और तुम्हारी डिजाइंस तो कमाल की होती थी। मैं इस जन्म में भी कमाल का ही हूँ, बस इस बात का पता तुम्हें धीरे धीरे चलेगा। पहला नमूना तो तुमने तभी देख लिया होगा जब मैंने लैंड पाने के लिए तुम्हारी बहन से शादी तक करने के लिए कह दिया था, आरव ने तिरछा मुस्कुराकर कहा, जिस पर आयु उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। उनके इस जन्म की कहानी से आर्या पूरी तरह अनजान था तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्या को कुछ पूछने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि उन्हें देर हो रही थी और वो तुरंत वहां से दिल्ली के लिए निकल पड़े। आरव ने एयरपोर्ट तक आयु को आर्या के साथ भेजा था और खुद अलग गाड़ी में गया था। वो जानता था माहिरा ने जरूर उसके पीछे किसी न किसी को लगा रखा होगा, इसीलिए उसने पहले ही सावधानी बरत ली थी। लगभग दो घंटे बाद आर्या आयु और आरव के साथ अपने घर पहुंच चुका था। उस वक्त लंच टाइम था। आर्य की कॉल करने के बाद साक्षी और अयान दोनों घर पर ही थे। वो अभी तक सरप्राइज थे कि आखिर आर्य ऐसी क्या जरूरी चीज दिखाना चाहता होगा जिसकी वजह से उसने उन्हें घर पर रोका था। अयान की उम्र लगभग 52 साल के आसपास था और इस वक्त लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने आंखों पर मोटा सा स्टाइलिश चश्मा चढ़ा रखा था। वहीं साक्षी की एज लगभग 56 साल के पास थी। साक्षी बार बार आर्या को कॉल कर रही थी। उसका कॉल रिसीव ना करने पर वो इरिटेट होकर आयान से बोली, कब से कॉल किए जा रही हूँ, जवाब भी नहीं दे रहा। ऊपर से कहीं जाने से भी मना किया है, उसकी वजह से मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग मुझे पोस्टपोन करनी पड़ी। ये लड़का आखिर करता क्या रहता है, मुझे भी नहीं पता। उसकी असिस्टेंट से पता चला कि वो आज हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था, कल सर्जरी के बाद से ही गायब है और फोन नहीं उठा रहा। आई होप कि सब ठीक हो, वो अपने शेड्यूल का पक्का है। पहली बार उसे इस तरह लापरवाही करते देखा है, अयान ने साक्षी की तरफ देखे बिना जवाब दिया। अचानक साक्षी के दिमाग ने कुछ स्ट्राइक हुआ और वो अयान के पास बैठते हुए बोली, अयान कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्या हमें किसी लड़की से मिलवाना चाहता है। इतनी देर तक अयान ने बात करते वक्त साक्षी की तरफ देखा तक नहीं था, लेकिन जब उसने किसी लड़की का जिक्र सुना तो वो जल्दी से साक्षी की तरफ देखकर बोला, उसकी असिस्टेंट ने बताया था उसकी लाइफ में कोई नहीं है, अगर ऐसा है तो इससे बड़ी खुशी का दिन नहीं हो सकता। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो, जाकर स्पेशल लंच तैयार करवाओ। हाँ सही कह रहे हो, हमारे बच्चे की लाइफ में इतने दिनों बाद खुशियों का टाइम आया है और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मेरा बस चलता तो मैं कब की उसकी शादी करवा देती, पर सुनता ही कहाँ है, घर भी ठीक से नहीं आता, साक्षी ने मायूसी से कहा।
साक्षी उठकर जाने को हुई तभी उनके घर की डोरबेल बजी। गाड़ी पार्क करने के बाद आर्या आरफ के साथ सेकंड एंट्रेंस पर आ चुका था और वहीं से उसने डोरबेल बजाई थी। आयु के पास शालू का कॉल आने की वजह से वो अभी भी गाड़ी में बैठी हुई थी। लगता है आर्या आ गया है, पता नहीं मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया, मैंने तो लंच में कुछ स्पेशल तैयार भी नहीं करवाया है। आप दोनों ही हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो, तो वही रूखा सूखा खाना बनाए, पता नहीं वो बेचारी क्या सोचेगी हमारे बारे में, साक्षी ने मुंह बनाकर कहा। बाहर से ऑर्डर कर देंगे, अयान ने जवाब दिया। अयान और साक्षी सब कुछ छोड़कर दरवाजे तक गए। साक्षी ने गेट खोला तो सामने आर्या के साथ आरफ को देखकर उन दोनों को एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो हैरानी से उन्हें देख रहे थे। अयान के तो पैरों में जैसे जान न रही हो, इतने सालों बाद आरफ को अपने सामने देखकर उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। अयान दूसरी तरफ गिरता उससे पहले आरफ ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया था। अयान की आंखें नम थीं, पर अब उसके इमोशंस पर खुद का बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। आज 26 साल बाद अपने भाई को इस तरह सामने देखकर अयान की आंखों से आंसू का कतरा बह गया।